हालेलुया। खुदावन के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदा के हजूर झुके और खुदावन से उसकी हिकमत और दनाई मांगे। चंद लम्हों के लिए खुदावन से दरख्वास्त मिन्नत करेंगे कि जो कुछ भी हम सीखें हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरे और उसका बेटा यीशु मसीह नाम इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया। सब दुआ करेंगे, सब अपने लबों को खोले और उससे हिकमत और दनाई मांगे ताकि उसके कलाम को समझने वाले बने। खुदा बाप तेरे शुक्रगुजार हैं आज की सुबह के लिए, इस वक्त के लिए, खुदा खुदा इस घड़ी के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में दी है। आज हम जो कुछ भी सीखें खुदावन हम सब के लिए खुदावन तरबियत, हौसला फजाई और यकीन और खुदावन इस दुनिया में खुदावंद बरकत का बैस ठहरे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हम सब खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों के जी उठने के बारे में सीख रहे हैं और हम पिछले दिनों से सीख रहे हैं कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो 40 दिन तक अपने शिगिर्दों पर जाहिर होता रहा और 40 दिन तक उनको बादशाही का कलाम और अपने भेद और सच्चाइयां बताता रहा। और हम सीख रहे हैं कि जी उठे मसीह के बारे में कि जी उठने के बाद उसका जहूर आमद, उसका नजर आना या उसका दिखाई देना, जिसे कहते हैं कि वो नजर आता है अपने लोगों को, उसके कितने वाक्य लिखे गए हैं? 17। कितने? 17 दफा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने लोगों पर जाहिर हुआ। हमने पहला देखा था, कौन सा वाक्या था? मरियम मगदली ने। कौन थी पहली औरत? फिर उसके बाद दूसरी औरतों पर जिसमें काफी औरतें थीं, उन पर जाहिर हुआ। फिर तीसरी बार किस पर जाहिर हुआ, चेता है किसी को? शमान पत्रस पर। किस पर? पत्रस पर। यीशु मसीह का शागिर्द जो एक वक्त में डरता भी था, जो एक वक्त में घबराया भी था, जिसने एक वक्त में यीशु मसीह का इनकार भी किया था और एक वक्त आया कि उसने उस कुदरत के बायस पैगाम दिया तो बहुत से लोग यीशु मसीह के खानदान में शामिल हो गए। बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। आज हम सीखेंगे दो और शिगिर्दों के बारे में। ये चौथा वाक्या हम सीखने के लिए जा रहे हैं जो अमाउस की राह पर जा रहे थे। ये एक गांव था जो यरूशलम से तकरीबन 7 मील के फासले पर था। जिस दिन ये वाक्या हुआ ये इतवार की दोपहर है जब यीशु मसीह इन दो लोगों पर जाहिर हुआ और उनसे बातें कर रहा है और फिर उनके साथ खाना खाया और उनको पता नहीं था जब तक यीशु मसीह ने बरकत दी और रोटी खाई। सो यीशु मसीह इन दो शिगिर्दों पर जाहिर हुआ। सो इससे पहले कि हम इस हिस्से को सीखें आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि आपको पता होगा जब यीशु मसीह के पास एक सरदार काहिन रात के वक्त आया था जो शरा का आलम था और मसूल लेने वालों का सरदार था। किसी को पता उसका नाम क्या था? निकुदीमस। क्या था उसका नाम? जब हम निकुदीमस को देखते हैं तो वो आधी रात के वक्त में आया किसके पास? यीशु मसीह के पास। और यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? तुझे नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। उसने शरीयत पढ़ी हुई थी, वो कम से कम हम अंदाजा लगा सकते हैं 40-50 साल का होगा, बहुत ज्यादा उम्र का था, शरीयत पढ़ी थी और खुदा से मोहब्बत रखता था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के खानदान में शामिल होने के लिए हमें अपने लबों से इकरार करने की जरूरत है। और कल रात ऐसा ही हुआ। कल रात 12 जो छोटे छोटे बच्चे उनमें बड़े बच्चे उन 12 बच्चों ने यीशु मसीह को कल रात शख्सी तौर पर कबूल किया और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जब कोई जमीन पर तौबा करता है, यीशु मसीह को कबूल करता है, निजात पाता है, तो आसमान पर बहुत बड़ी खुशी होती है। सो कल रात हमने मिठाई खाई, कल रात हमने बहुत ज्यादा खुशी की और उन सब ने अपनी पदेश का दिन, ये रूहानी पदेश कहते हैं बाइबल मुकद्दस में, उन्होंने अपनी पदेश का दिन लिखा और कलाम खुदा की वो आयत लिखी ताकि वो याद रखें कि इस दिन, इस साल, इस वक्त में उनकी रूहानी पदेश हुई। इसलिए मत सोचें कि हम मसीही खानदान में पैदा हुए हैं इसलिए हमें मसीह को कबूल नहीं करना। नहीं, हम मसीही खानदान में पैदा तो हुए हैं लेकिन हमें यीशु मसीह पर निजात मान लाने की जरूरत है, शख्सी तौर पर उसका लोगों के सामने इकरार करने की जरूरत है कि वो मुर्दों में से जी उठा हुआ मसीह है। और आए हम इस वाक्या को पढ़ें। ये आपको वाक्या मिलेगा लूका की इंजील उसका 24वां बाप उसकी 13वीं आयत से, ये कहानी पढ़ूंगा। इसलिए इससे पहले इसे पढ़ें, खुदावंद के हजूर हालेलुया का नारा लगाएंगे और तालियां बजाएंगे उन 12 बच्चों के लिए जिन्होंने कल रात यीशु मसीह को कबूल किया, क्योंकि ये बहुत बड़ी खुशी है। हालेलुया, तालियां हो जाएं फिर यीशु मसीह के लिए। ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उन 12 बच्चों ने अपनी जिंदगी में ये इकरार किया है, अब वो दोजक के नहीं बल्कि खुदा के फर्जंद हैं, अब वो हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं, अब वो हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अगर तू ईमान लाएगा तो निजात पाएगा। और तब यीशु मसीह ने निकुदीमस से कहा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हलाक यानी कि वो दोजक में नहीं जाएगा बल्कि हमेशा की जिंदगी का वारिस है। जिनमें से एक हमारे पास नईम, इसने भी कल यीशु मसीह को कबूल किया है, ये भी यीशु मसीह के खानदान में शामिल है। सो यहां पर हम चौथा वाक्या पढ़ेंगे। ये वाक्या काफी लंबा है लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इसे पढ़ें। सो मेरे साथ इसे पढ़ें, लूका की इंजील उसका 24वां बाप उसकी 13वीं आयत से। और देखो उसी दिन उनमें से दो आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम अमाउस है, वो यरूशलम से तकरीबन 7 मील के फासला पर है, और वो इन सब बातों की बाबत जो वाकया हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बात है जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने जिसका नाम कलुपास, काफ जेर ये पे कलुपास, ऐसे लफ्ज बनता जी, कलुपास था जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों में क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा कि यीशु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक और कलाम में कुदरत वाला नबी था। लूका की इंजील 24वां बाप उसकी 19वीं आयत से और 20वीं आयत में लिखा है, और सरदार काहिनों और हमारे हाकमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया जाए, लेकिन हमको उम्मीद थी कि इसराइल की मखलसी यही देगा और अलावा इसके अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज 3 दिन हो गए और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है, जो सवेरे ही कब्र पर गई थीं और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्ता को भी देखा, उन्होंने कहा वो जिंदा है। और बाज हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाकर पाया, मगर उसको ना देखा। उसने उनसे कहा, ए नादानो, यहां पर यीशु मसीह उन दोनों शिगिर्दों से बात कर रहा है, ए नादानो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई थीं, लिखी हुई हैं, वो उनको समझा दी। इतने में उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां जाते थे और उससे और उसके ढलान और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उससे ये कहकर मजबूर किया, हमारे साथ रह क्योंकि शाम हो हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया है। वो अंदर गया ताकि उसके उनके साथ रहे। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया कि वो उनकी उनको उसको पहचान लिया और वो उनकी नजर से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था तो क्या हमारा दिल खुशी जोश से ना भर गया था? पस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलम को लौट गए और उन ग्यारह और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वो कह रहे थे खुदावंद बेशक जी उठा और शमा उनको दिखाई दिया है। और उन्होंने राह का हाल बयान किया और ये भी कि उसने उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये वो वाक्या है जिसमें दो शिगिर्द हैं जो अमाउस नाम एक देहात जिसे कहते हैं चक था, जो यरूशलम के नजदीक 7 मील पर था। ये माजरा वो सुन चुके थे, गमगीन थे, वो बातें कर रहे थे तो यीशु मसीह उनके साथ मुसाफिर के तौर पर मिल गया, उनके साथ मिल गया। और ये चौथा वाक्या है, ये चौथा वाक्या है जब यीशु मसीह जाहिर हुआ। सो यीशु मसीह ने उनसे बात की, आपने ये पढ़ा और सुना है। मैंने ये हवाला इसलिए पढ़ा है ताकि आपको पूरी कहानी की तस्वीर नजर आ जाए कि ये बाइबल में है। तो वहां पर यीशु मसीह उन पर जाहिर हुआ, वो यीशु मसीह के साथ बातें करते रहे लेकिन किसी मकसद के लिए उनकी आंखें बंद की गई थी। आज भी यीशु मसीह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम पर जाहिर होता है तरह तरह के रूपों में, लेकिन हम बहुत दफा नहीं देख सकते, महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पीछे खुदा का एक मकसद है। आज भी यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक मुसाफरों के रूप में, परदेशियों के रूप में, भूखों के रूप में, कैदी के रूप में, बच्चे के रूप में हम सबसे कहीं ना कहीं मिलता है। इसलिए क्योंकि वो जानता है कि हम कितना उसका जलाल बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर वो अपने जलाल में जाहिर हो तो हम वो इतना पाक है कि हम उसको देख नहीं सकेंगे, इतनी जलाली हालत है उसकी, पाकीजगी है। सो यीशु मसीह इन पर जाहिर हुआ कि माजरा जाने क्या हो रहा है। आज भी यीशु हमारे दरमियान आता है, चलता है, फिरता है और हमारे दिलों को जांचता है, टंटोलता है, वो ढूंढता है कि मेरे लिए क्या जगह है। ये दो शख्स जिनका वाक्य लिखा गया है वो क्या कर रहे थे? क्या यरूशलम की खेती बाड़ी की बात कर रहे थे? नहीं। क्या यरूशलम में कारोबार चलाने की बात कर रहे थे? नहीं। क्या वो अपने बैलों को जमीन में हल फेरने के लिए कर रहे थे बात कि किस तरह उनको तैयार किया जाए? नहीं, वो बात कर रहे थे यीशु मसीह के बारे में, जो माजरा हुआ, जो वाकया हुआ, जो हालात पैदा हुए, जो यीशु मसीह के साथ गुजरा। और वो सच्चाई से वाकफ थे कि यीशु मसीह अपने काम, अपने जलाल, अपनी कुदरत से खुदा का नबी था, जो इसराइल की छुड़ाने वाला, इसराइल की तसल्ली का क्या था? वसीला था। आज हम भी याद रखें, यीशु मसीह बहुत से रूपों में फिरता है। और मत्ती की इंजील में ही यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से कहा था कि वो वक्त आएगा कि रासबाज जब मेरे हजूर खड़े होंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि हाँ, जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं नंगा था तो तुमने मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं कैद में था तो तुमने मेरा पता किया, जब मैं बीमार था तो तुमने मेरी तमाददारी की। और यीशु मसीह कहता है, जिन्होंने इन छोटे बच्चों के साथ जो सलूक किया उन्होंने मेरे ही साथ किया। सो इसका मतलब है यीशु मसीह जैसे के जिंदा है, वो हमारे दरमियान चलता फिरता है। और सबसे बड़ी बात, यीशु मसीह आपके अंदर रहता है। यीशु मसीह आपके अंदर रहता है क्योंकि जो कोई यीशु मसीह को कबूल करता है, जैसे कल रात इन 12 बच्चों ने यीशु मसीह को कबूल किया, अब वो यीशु मसीह के रहने की जगह है। जैसे हैकल दुआ करने की जगह है, वैसे ही ईमानदार यीशु मसीह के रहने की जगह है। सो ये चौथा वाक्या था इन दो शागिर्दों का जिनमें जिनके ऊपर यीशु मसीह जाहिर हुआ, जिन पर जाहिर हुआ, और यीशु मसीह ने उनको वो तमाम बातें बताई। जब यीशु मसीह ने उनको बताया तो उनका दिल जोश से भर गया। बहुत दफा आप भी जब खुदा का कोई खादम या कोई बच्चे के वसीला से जब आपका दिल, आपका रूह जोश से, खुशी से, इत्मीनान से आपकी फिक्रें जाती रहें, हालांकि फिक्रें वहीं पर मौजूद हैं लेकिन जाती रहें, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुदा का कलाम जिंदा और पाक है और वो हमारी फिक्रों को दूर करता है, वो हमें जोश से भर देता है। और खुदा का कलाम बेतासीर नहीं लौटता। खुदा का कलाम माफ करना सिखाता है। खुदा का कलाम खुशी का पैगाम देना सिखाता है। और ये चौथा वाक्या था जिसमें हमने पढ़ा कि यीशु मसीह उन औरतों पर भी जाहिर हुआ जब फरिश्ता ने उनको कहा, फिर हमने पढ़ा कि पतरस पर भी जाहिर हुआ, हमने इस वाक्या को पढ़ा, और आज हमने पढ़ा कि चौथी दफा वो अपने शिगिर्दों पर जाहिर हुआ। इसलिए यीशु मसीह आपके दरमियान, आपके अंदर रहता है, उसकी आवाज को सुने। ख्वाहिश करें, ख्वाहिश करें ना के कार की, ना के कोठी की, ना के सोने की, ना के चांदी की, ना के खूबसूरत हो जाने की, ना के किसी और चीज की। ख्वाहिश करें, यीशु मसीह मैं तुझे देखना चाहती हूं, यीशु मसीह मुझे अपने आप को मुझ पर जाहिर कर, मेरे ईमान को बढ़ा, मुझे तरक्की दे ईमान में। तो ये सब चीजें, दुनिया की सब चीजें आपके पीछे पीछे चलेंगी। जब हम दुनिया की चीजों के पीछे भागेंगे तो वो आगे आगे भागेंगी, जब हम यीशु मसीह के पीछे भागेंगे तो दुनिया की तमाम बरकतें, दुनिया की वो तमाम खुशियां जो यीशु मसीह ने तैयार की हैं, वो आपके पीछे पीछे भागेंगी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने ये कहा है। देखना चाहते हैं, मत्ती की इंजील उसका 6 बाप उसकी 34वीं आयत में लिखा है कि पहले तुम मेरी बादशाही और मेरी तलाश करो तो ये सब चीजें जिसके लिए गैर कौमें ख्वाहिश करती हैं तुमको मिल जाएंगी। पहले मेरी बादशाही और मेरी मर्जी की तलाश करो, ये बात वहां पर यीशु मसीह ने लिखी है, तो ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। इसलिए ख्वाहिश करें, यीशु मसीह मैं तेरी ताबेदार होना चाहती हूँ, यीशु मसीह मैं तुझे देखना चाहती हूँ, यीशु मसीह मैं तेरी रासबाजी को, तेरी बादशाही को ढूंढना चाहती हूँ, ढूंढना चाहता हूं। تو برکتوں پر برکتیں، برکتوں کے برکتوں پر برکتیں، دکھوں میں برکتیں، مصیبتوں میں برکتیں، فکروں میں برکتیں، ہر حالات میں آپ اطمینان پائیں گے. آئے ہم خدا کے حضور جھکیں. آسمانی باپ، آج کے دن کے لیے، اس پیغام کے لیے، جیسے خداوند تو اماؤس کی راہ پر ان دو شاگردوں پر ظاہر ہوا، ہم ایمان رکھتے ہیں تو زندہ ہے اور تو آج بھی اپنے لوگوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اور تو خداوند اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے جب تو چاہتا ہے. سو ہم سب کو خداوند یہ خواہش دے کہ ہم تیرے دیدار کی خداوند خدا خواہش رکھیں، کہ تو ہم پر ظاہر ہو، کہ تو ہم کو خداوند خدا اپنے نور سے خداوند خدا منور کرتا جا. سو آج کے پیغام کے وسیلہ سے سب کو بڑی برکت دے. یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین.